अब मुनाफिक की आदत है कि पहले बातें करता है, बातें करता है, चिकनी चुपड़ी मीठी, बड़े प्यार की मोहब्बत की, फिर जब बात ना मानी जाए ना तो क्या कहता है, अल्लाह की कसम, कसम है, कसम खाती हूँ, नहीं तो बार मैं कसम खाती हूँ। यही अंदाज़ आप पीछे 2 दफ़ा देख चुके हैं, अब तीसरी दफ़ा इस सूरत में आ रहा है, आयत 95, सयहलिफून बिल्लाही, अभी ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे। लकुम, देखिए यहाँ फिर ला भी वही असूल है जो यूमिनों के साथ था ला का, सयहलिफून लकुम असल में इधर तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे सामने आकर कस्में खाएंगे, किसकी, बिल्लाही अल्लाह की। कब, इज़न क़लब तुम इलैहिम, जब तुम इनकी तरफ लौट कर आओगे। इस हिस्से से क्या पता चलता है कि यह आयत कब नाजिल हुई, अभी आप आए नहीं थे, आ रहे थे, तब जब तुम उनकी तरफ पलट आओगे, क्यों भाई इतनी कस्में खा रहे हैं, ली तो और दुअन हम ताकि आप इनसे चश्म पोशी बरतें। मुनाफिक ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि अल्लाह के नबी उससे हरास करें, क्योंकि वो नज़रों में रहना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। आले इमरान में एक आयत पढ़ी थी ना यहूद मदीना के बारे में, कि वो क्या चाहते थे, युहमदु बिमा लम यफ़लू, जो नहीं किया उस पर भी तारीफ़ें हों हमारी। यहाँ भी कैफियत है, तो वो आपकी तरफ आएंगे, भड़ेंगे, आप क्या करें, फारिदुन, आप इनसे एराज कीजिए, क्योंकि इन नम रिज सुन, ये रिज्स हैं, नापाकी हैं, गंदगी हैं, वमा वहम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है, जजाम बिमा कानू यकसिबून, बदला है इसका जो ये कमाई कर रहे हैं। फिर यहलिफून लकुम लितरदाउनहुम, ये कस्में खाएंगे या खा रहे हैं कि मुसलमानों तुम इनसे राज़ी हो जाओ। पहले नबी सल्लम को राज़ी करने की कोशिश की, नहीं कर सके, नहीं हुए, अब मुसलमानों के पास जाएंगे, क्यों, यहाँ फिर समझिएगा, मुनाफिकीन की दुनियादारी के लिहाज से ये मजबूरी थी। क्या कि एक माशरे के अंदर सब मिल के रह रहे थे, इकट्ठे रहते, खाते पीते, इवन औस और खजरज की आपस में रिश्तेदारियाँ भी थी। ऐसे माहौल में वो क्या समझते थे कि अगर मुसलमानों के दिल इनसे साफ ना हुए तो वो इस माशरे के अंदर एक तरह से अछूत बन जाएंगे, बिल्कुल वही बात कि उनको कॉर्नर कर दिया जाएगा। इसलिए वो मुसलमानों के अंदर अपना एतमाद बहाल करने के लिए दौड़ धूप करते, मुसलमानों से मुलाकातें करते, इनको अपनी मजबूरियां बताते, कस्में खाते, अपने इखलास का यकीन दिलाते, और आज की ज़ुबान में क्या जुमले बोलते होंगे, भैया बच्चों के रिश्ते भी तो इधर ही करने हैं, मर गए तो जनाजा भी तो इन्होंने ही हमारा पढ़ाना है, और अगर कल शादी की तो 1,000 बंदा कहाँ से इकट्ठा करना है, यहीं से करना है, ताकि पीछे बताएं हमारी वलीमे में 1,000 बंदा आया था, कोई हुआ तो उसको अपना घर और अपनी गाड़ियाँ भी तो हमने दिखानी है। मुनाफिक का मसला लोग होते हैं, सीधी सी बात है, एक जुमले में आपको मुनाफिकत का वो सिरा समझ आ जाएगा कि मुनाफिक का प्रॉब्लम लोग होते हैं। जितना आप कह लें कि ईमान वाला अल्लाह कॉन्शियस होता है, मुनाफिक इतना पीपल कॉन्शियस होता है, और वो चाहता क्या है कि लोग मेरे से नाराज़ ना हो, लोग लोग लोग, अल्लाह कहते हैं फ़ाइन तरदउन हम, अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गए, फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन, अल्लाह फिर भी नाफरमान कौम से राज़ी नहीं होता। देखिए ज़रा अल्लाह के नबी को भी सख्त बात कह दी इधर, कि आपने होना है तो हो जाए, ये बिल्कुल ऐसे सिर्फ समझाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई मिसाल नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि बाप कहता है तू इस नाहल से राज़ी होती है तो हो जा, मैं नहीं हूँ, यानी बाप को बच्चे पे गुस्सा आया, माँ कहती है अच्छा चले ना, कोई बात नहीं, ऐसे है बेचारा, रो रहा है, दो रहा है, मुझे तो तरस आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसकी मान लो, तो बाप कहता है तू हो जा राज़ी, मैं नहीं होता, यानी उसको इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है इसके ऊपर कि इसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात के ऊपर गौर नहीं करता, कान नहीं धरता, तो मैं अब क्यों इसके ऊपर करूँ। यहाँ भी यही बात है कि नबी होते हैं राज़ी तो हो जाएं, अल्लाह कहता है मैं राज़ी नहीं होऊंगा। सोचिए ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, उस बंदे की ज़िंदगी कितनी घुटन का शिकार हो जाए जिससे उसका रब उस राज़ी ना हो, नाराज़ हो। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई लोग सामने बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कराएं तो अल्लाह उनसे राज़ी हो, और नबी इंसान थे, हो सकता है वक्ती तौर पे दिल पसीज जाए, वक्ती तौर पे दिल में ख्याल आ जाए, चलो बेचारे मजबूर हैं, चलो कोई नहीं, चलो ये हो जाए, नहीं तो फिर क्या पता चले, लीडर आपसे खुश हो भी जाए लेकिन अगर रब राज़ी नहीं है तो काम नहीं होगा। तो लोगों को राज़ी करने से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करना है। अच्छा दूसरी तरफ भी देखिए, अगर अल्लाह राज़ी हो और दूसरे नाराज़ हों, मसलन लीडर की बात की, नबी आज नहीं है, कोई भी इंसान है, उसको आपसे गलतफहमी हो जाती है, या वो आपसे नाराज़ है लेकिन अल्लाह के आप सच्चे हैं, यकीन कीजिए, आपको ईमान होना चाहिए इस बात का कि आपको मौत नहीं आएगी इससे पहले कि अल्लाह उसको आपसे राज़ी कर देगा। वक्ती तौर पे इंसानों की इस दुनिया में रहते हुए दिलों में कदूरतें, रंजिशें, गलतफहमियां, बातें आती हैं, लेकिन जिस तरह इंसान नापायदार है ना, इसी तरह इसके जज्बे भी बड़े नापायदार होते हैं। आज किसी के बारे में बुरा, कल अच्छा हो जाएगा, अल्लाह मौका देगा, फिर आप अच्छे बन जाएंगे। ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की नज़रों में राज़ी हों। लेकिन याद रखिए कि बेपरवाही होगी ना तो फिर और भी हालात बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह अपने नबी को एक किस्म का सख्ती से बात करें कि आप होते हैं तो हो जाए राज़ी, मैं तो नहीं होऊंगा। असल में देखिए, नबी से सल्लम तरबियत करते थे सहाबा की, और अल्लाह ताला तरबियत फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए, जिसकी अपनी तरबियत हुई होती है ना, वही दूसरों की कर सकता है। अगर आपकी अपनी बातचीत का अंदाज़ अच्छा नहीं है, शायद ही आप अपने बच्चों की बातचीत का अंदाज़ ठीक कर सकें। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला की इस बात में एक तो अकीदे की इस्लाह हो रही है हमारे। यहाँ तक बात पूरी हुई, लिख लें 94 से 96 तक किन मुनाफिकों का जिक्र था, कौन सा निफाक था, जो हुब्बे दुनिया की वजह से पैदा होता है। इन मुनाफिकों का मेन प्रॉब्लम जो था हुब्बे दुनिया थी, दुनिया को छोड़ नहीं पा रहे थे, नबी का साथ नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं ना कि इमाम मुझको बुलाए हैं और कुफर मुझे रोके हैं, गाने की आदत भी है और निकलती हैं दुआएं मुंह से ठुमरियां बनकर। किसी ने ऐसे ही दो गले लोगों के लिए कहा था। अब ऐसे लोगों की बात पूरी हो गई, क्योंकि अब इसके बाद एक और बात भी शुरू होने वाली है। इस सारे हिस्से में चंद जुमले जो कि आपके फ़ायदे के होंगे, 80 के करीब मुनाफिकों के नाम नबी सल्लम को बताए गए और उनके साथ उठना, बैठना, तर्के ताल्लुक और बातचीत करना रोक दिया गया। ये सारी तफसीर के दलाइल मेरे पास मौजूद है, अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिखा दूंगी। मकातिल कहते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन उबई बिन खल्फ के बारे में हुआ कि जिसने रसूल से अर्ज़ किया था कि अब आप मुझसे राज़ी हो जाएं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं इसके बाद किसी जिहाद में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तफसीर मजहरी की रिवायत है। तो ये बड़े बड़े मुनाफिक जो अपनी दुनिया भी नहीं छोड़ना चाहते थे और नबी का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते थे, दोनों चीज़ों को वो लेना चाहते थे, ले सकते थे। और ये सारा वाकया कहते हैं मामला कब हुआ कि नबी सल्लम हसबे आदत तबूक से वापसी पर सीधा मस्जिद नबवी आए। आपकी आदत मुबारक थी कि जब आप शहर में दाखिल होते थे तो सीधा घर नहीं जाते थे, मस्जिद जाते थे, फिर दो नफिल पढ़ते थे, फिर घर वालों को इत्तला दे कर जाते थे। ये एक अदब भी है। जो ही आप मस्जिद नबवी में आए और आपने नफिल अदा किए, खबर तो फैल ही गई, तो वहाँ फिर लोगों ने आकर आपके साथ मिलना शुरू किया। और कहते हैं तकरीबन 80 के करीब मुनाफिक आए और अपने उज़र झूठे बहाने दिए। ये रही को मखतूम में भी बात आप पढ़ चुके हैं, या अगर पढ़ेंगे यही नहीं था। फिर इसके बाद अगली चीज़ इस हिस्से में से जो आपके मेरे काबिल गौर है, वो क्या है जिस पे बहुत आपको लोगों का मिस इंटरप्रटेशन भी दिखेगा, और वो है वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलु। इस एक आयत को ज़रा यहाँ रुक जाएँ, अल्लाहु व रसूलु, अल्लाहु अमलकुम व रसूलु। यहाँ से बाज़ लोगों ने एक ख़यानत की है। कहते हैं देखो, लुक एट दिस, अल्लाह भी हमारे अमल देखता है और रसूल भी देखता है। अब ज़रा गौर करिए आप इस एक आयत पर। कहते हैं हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी को हमारे सारे अमल दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जाते थे, और क़यामत के दिन अल्लाह और रसूल मिलजुल के हमारे फ़ैसले करेंगे। अब आप इस एक आयत के टुकड़े पे देखिए, वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि व शहादा। इसके ज़रा टेक्स्ट को आप समझे, मैं बयान कर चुकी हूँ कि अब आइंदा तुम किसी अगले जंग के मौके पे, किसी अगली दीन की कॉज पे क्या करते हो, अल्लाह के नबी मौजूद थे तो देखेंगे ना। ये तो एक ख़ास हालात में बात थी, अल्लाह के रसूल देखेंगे अगली जंग में तुम गए हो कि नहीं, तुम तौबा करके दीन की तरफ पलटे हो कि नहीं। अल्लाह को तो इस वक्त भी पता है, नबी देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन लोगों ने इससे अकीदे की खबासतें पैदा कर दी। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान पढ़कर भटकने से महफूज रखे और बेहतरीन तरीके से ये मामला हो। फिर इसके बारे में एक रिवायत आती है अब्दुल्ला बिन मसूद की। कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को ये बात फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह के ज़माने में तो कुछ लोगों का मुआखज़ा वही के ज़रिए हो जाता था। ये बड़ी अहम बात है, मैं और आप नहीं किसी को मुनाफिक कह सकते, किसी का निफाक खुल के भी दिखे ना, मुझे आपको इजाज़त ही नहीं, ये हमारी औकात से बड़ी भी बात होगी। तो वो कहते हैं कि वही के ज़रिए अल्लाह के नबी के सामने तो ये बातें आ जाती थी, लेकिन अब तो वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। ज़ाहरी बात है कि आपके बाद वही ख़त्म और अंदर की बातें हम नहीं जानते, इसलिए अब कैसे होगा। तो कहा, अब बड़ी गौर से सुनने की बात है, कहने लगे, अब तुम्हारा पता चलेगा तुम्हारे अमलों से। आने वाले दिनों में तुम करते क्या हो, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे अंदर निफाक नहीं है, और अगर बुरे करोगे तो तुम वही ने जो काम किया था वो अब तुम्हारे अपने अमाल दिखाएंगे। और याद रखिए, छुपता नहीं है, असल नहीं छुपती। मैं आपको 10 दफ़ा बातें करूं, ये करूंगी वो करूंगी, मैं बड़ी मुखलिस हूं, मुझे दीन से बड़ा प्यार है, मुझे आपके साथ बड़ा प्यार है, आपके स्कूल से बड़ा प्यार है, मैं बड़ी मुखलिस हूं, मेरे अमलों से आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं सच्ची हूं कि झूठी। और अगर मैं कुछ भी ना कहूं और मैं अपने अमल से साबित करती जाऊं तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान बातों से ज़्यादा काम करके दिखा। कितने गुस्से गिले हो आप लोगों को मनाने या समझाने की बजाय, बेहतर अपना काम शुरू कर दें। जब बिगड़ा हुआ काम सीधा हो जाएगा, देखिएगा वो सारे गिले शिकवे एक दिन में दूर हो जाएंगे। मियाँ और बीवी लड़े में झगड़े में, बीवी हर हाय आप मानते नहीं, हाय रूठ गए माफ़ कर दें, हाय क्या हो गया, वो उसके पीछे पड़ेगी ना, वो और चिढ़ेगा। चुपके से पकड़ के वो काम शुरू कर दें जिसकी वजह से शौहर को गुस्सा आए, उसी का कोई काम शुरू कर दें। कई दिन से वो कुछ कह रहा था आपने नहीं किया था, आप सुस्ती में थे या लापरवाह थे, आप वो काम करें, देखिएगा उसका मूड ठीक हो जाएगा। वरना आप जितना उसके पीछे पड़ेंगे वो और उतना चिढ़ेगा। तो काम करो, काम करो, अपनी इसलाह कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें दिखा देगा तुम क्या करते हो। और ये जो बात थी फयुनब्बीकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो ये कैसे दिखाएगा? सूरह ज़िलज़ाल आयत 7-8, फमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यारा, तुम्हें भी दिखाएगा छोटे से छोटा अमल अच्छा भी और बुरा भी। तो क्या पता चला, अल्लाह को तो आज भी पता है, लेकिन मुझे और आपको क़यामत के दिन अपने अमाल दिखेंगे। क्या हम देख सकते हैं अपने अमाल को? क्या हम में से किसी में इतनी ताकत है कि अपने आप को देखें? अल्लाह ताला हमें दुनिया में पाक कर दे, क़यामत के दिन ना दूसरे हमारा निफाक देखें और ना हम देख सकें, और इस तरीके से ये काम ना करें। इसी तरह से आप देखिए कि जो लोग इतने मिक्स्ड अप थे कि मस्जिदों में, नमाजों में, जमात में नमाज़ पढ़ने भी जाते थे, लेकिन अगर उनके दिलों में खोट था तो सहाबा के लिए कितना सख्त क्राइटेरियन था फिर ऐसे लोगों का खरा खोटा होना समझना। एक बंदे आता ही नहीं दीन के तकाजों पर, आप साफ समझ जाते हैं कि वो मुखलिस नहीं। अच्छा, डर के रहना, बच के रहना। एक है जो आपके खिलाफ हर दूसरे दिन कोई कमेंट दे रहा है, आप उससे भी डर जाएंगे कि वही नहीं, पर उसके बारे में आप कहेंगे जो आपके साथ बैठा हो लेकिन उसका दिल आपके साथ ना हो, नाम इस्लाम का ले रहा हो। इसलिए सहाबा कराम की आइंदा की बेहतरी के लिए अल्लाह ने नबी सल्लम की ज़िंदगी में ये सारी बातें खोल खाल के पेश कर दी। और इसमें आप देखिए कि जब अगली आयतें आ रही हैं इसका थोड़ा सा खुलासा लीजिए। निफाक की पहली वजह हमने समझ ली, हुब्बे दुनिया। अब दूसरी वजह, ला इल्मी, वे इल्म रहना, इल्म से दूरी। आज इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कहते हैं ना पता हो ये रहमत है, ब्लिस नहीं है, हिपोक्रेसी है। जब लोग ये सोचते हैं कि हम इल्म लेंगे तो हमें अमल करना पड़ेगा और अमल ना किया तो पकड़ हो जाएगी, तो वो कहते हैं ना पढ़ो ना लिखो ना सुनो। यहाँ से आगे जिन मुनाफिकों का जिक्र है उनका ताल्लुक बदवी इलाकों से था। मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लम थे, उसके इर्द गिर्द की जो जगह थी वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ, जिसको आज की ज़ुबान में हम सबर्ब्स कह सकते हैं, छोटे छोटे गाँव कह लीजिए, कस्बा कह लीजिए, मैथिज उन तक पहुँच चुका था। और ख़ास तौर पे फतह मक्का के बाद नॉर्वे में रहने वाले क्या सिर्फ ओस्लो वाले नॉर्वे के लॉ को मानेंगे? नहीं, मोस्ट वाले भी मानेंगे, द्रमन वाले भी मानेंगे, और उसके इर्द गिर्द भी कोई छोटी मोटी बस्तियों की मानेंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म या लॉ देते, मिसाल है तबुक के लिए निकलो, तो ये ना सिर्फ ये कि मदीना के मुसलमानों के लिए था, ये साथ वाले जो बस्तियाँ थी उनके लिए भी था। अब जो वो साथ वाले थे ना, वो कम पढ़े लिखे थे, उजड़ थे, देहातों में रहते थे, इल्म भी नहीं था, कह लें कि ना दुनिया का इल्म था ना दीन का। याद रखिए, इससे बदतर निफाक कोई हो ही नहीं सकता कि ना बंदा दुनिया सीखे तो ना दीन सीखे। अमूमन हमारे जहनों में एक तसव्वुर आता है, और मैं खुद भी इसी की कायल थी एक वक्त तक, कि सारे गुनाह शहरों में होते हैं, मॉडर्न लोग शहरों के होते हैं, गुनाहगार शहरों के लोग होते हैं, फैशन शहरों के करते हैं। और जूँ ही किसी गाँव का सोचना, गाँव के हाय सीधे साधे भोले भाले बड़े नेक होंगे, बट ये झूठ है। कौन सा गुनाह है जो गांव में नहीं होता? आज तो मीडिया ने और माशाल्लाह टीवी स्क्रीनों ने घर घर फैशन भी पहुंचा दी और बेकार टाइम ज़ाया करना पढ़ा दिया। अब यहाँ जो हम पढ़ने लगे हैं ना, तो इसमें फिर तीन किस्म के लोग आने हैं, इसलिए आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है कि वो निफाक जो लाइल्मी के साथ पैदा होता है वो तो इतना बुरा होता है कि चलो वो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा दुश्मन हो तो वो ज़रा सा आपका नुकसान करेगा तो अपना फ़ायदा तो कर लेगा, लेकिन ये तो अपने लिए भी नुकसान रखते हैं। आइए देखते हैं 97 आयत है, अल आराब व अशद्दु कुफ्रं व निफाका। پہلی بات، پہلا جملہ، یہ بدو کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، کن سے؟ مدینہ کے منافقوں کی نسبت. کیوں زیادہ سخت ہیں؟ اجدر جانوروں میں رہنے کی وجہ سے سخت دل ہو چکے ہیں، کھردرے ہو چکے ہیں، کٹھور. دیکھیے رف اینڈ ٹف کا لفظ سنتے ہوں گے آپ انگلش میں. علم جو ہے نا، جو نالج ہے نا، یہ انسان کو ڈیلیکیٹ کر دیتا ہے، سافٹ نائس کر دیتا ہے، سافٹنر ہے. بات کرے گا سافٹلی، السلام علیکم، کیا حال ہے، بیٹھیے، کھائیں گے پئیں گے. اور جو علم سے دور ہے نا، کھاؤ گے تو نہیں، پیو گے تو نہیں، بیٹھ جاؤ. یعنی ان کی آواز میں ایک سختی ہوتی ہے، ایک ٹون ہوتی ہے، کبھی وہ بے تکلفی کے نام پہ ہوتی ہے اور کبھی وہ کہہ لیجئے کہ مجبوری ہوتی ہے. اور لکھا ہوا کتابوں میں کہ جانوروں میں رہنے کی وجہ سے انسان سخت ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو جنگل میں رہے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، یعنی اس میں سے وہ نزاکت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وجہ اللہ نے آگے بتا دی، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. اور زیادہ اس لائق ہیں کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. کیا پتہ چلا کہ مدینہ کے منافق جو بھی ہوا، بٹ ان کو نبی کی صحبت تو ملی نا. آپ کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے سے کچھ ادب، کوئی آداب، کوئی کہہ لیجئے پروٹوکول فالو کرنا تو آ گیا. پھر ہر جمعے آپ سے خطبہ سنتے تو تھے نا. آپ کی نصیحتوں کا ایک سلسلہ شب و روز ان کے درمیان چلتا رہتا تھا. پر یہ جو جنگلوں میں رہنے والے اور دیہاتوں میں رہنے والے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو تعلیم اور تعلم کے کوئی مواقع ہی نہ ملے. دوسری بات ہے فطری اور منطقی طور پہ کفر اور شرک اور نفاق کی شدت ان میں زیادہ تھی، اجڑ تھے نا. انہوں نے اس چیز سے فائدہ نہ اٹھایا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ جب تک سکول نہیں گیا ہوتا نا، وہ اور طرح بیہیو کرتا ہے. پھر جب سکول میں جاتا، اٹھتا، بیٹھتا ہے تھوڑے دن کے بعد، پھر اس کو کم از کم ٹیچر کی بات ماننی آ جاتی ہے. یہی بات ہے ادھر. اب ہوا کیا، 98 آئے دیکھیے گا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَا يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. اور ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ انہیں اگر خرچ کرنا پڑے، اللہ اکبر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں ان بدوؤں میں سے کہ اگر ان کو اسلام کے نام پر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کو، مغرمہ، تاوان سمجھتے ہیں. مغرم کے غرم، غرامہ کیا ہوتا ہے، ایسا بوجھ جس کو بندہ گلے میں سمجھے، یعنی تاوان، ٹیکس، جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ٹول ٹیکس ہے، کہ کوئی بھی چیز جب ان کو دین کے نام پر دینی پڑ جاتی ہے، کوئی بھی خدمت جو ان کو اسلام کے نام پر کرنی پڑ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کو ایک آنر نہیں سمجھ رہے ہوتے، بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہائے مصیبت آج کے دن، آج پھر یہ وہ. جب اس طرح کی کوئی کیفیت ان کے سامنے آتی ہے نا، تو ایسے لوگ جو ہیں اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں. زکوٰۃ تو ان کو اتنی بوجھل لگتی ہے، عشر کی ادائیگی جو اسلام نے ان پہ رکھی تھی وہ ان کے لیے اور بھی بہت ہی بری ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ منتظر ہیں کہ تم لوگوں پر کسی طرح سے گردش زمانہ آ جائے. یعنی ناگواری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کا دل کیا کرتا ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ کے نبی دنیا سے جائیں، کوئی گردش آئے، کوئی جنگ آئے، اور یہ اس میں بڑی عزت سے شہید ہو جائیں، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساری آخری رسومات کر دیں، اور یہ سارے صحابہ ختم ہو، یہ سارا سلسلہ ختم ہو. ہر آئے دن میسج، ہائے آئے دن پرابلم، ہر آئے دن ان کے ذمہ داریاں ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو. اچھا، اپنے گھر کو کوئی نہیں کہتا کہ خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، اب روزہ رکھ کے بھی تمہارے کام کروں. کرنے جو ہیں پتہ ہے، تو دین کے نام پہ کہتے ہیں آج کے دن بھی کریں، عید کے دن بھی کام کریں ہم. اچھا، عید سے ایک دن پہلے بھی ہمیں بلایا جا رہا ہے، تو بھائی اپنے گھر والوں کو بھی تو یہی کہیں، کیوں عید ہے کل، آپ میں نے چوڑیاں پہننی ہیں، مہندی لگانی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کھانا پکاؤ. سیدھی سی بات ہے، جب آپ کا گھر آپ کی جان نہیں چھوڑتا تو آپ کا دین آپ کی جان کیسے چھوڑے. یا تو آپ اپنی جان چھڑا لیں اس سے، پھر آپ موج کریں، اور جو موج ہونی ہے وہ تو پھر آپ کو تب پتہ چلے گی جب وہ موجیں ہوں گی. تو یاد رکھیے، کل بھی بات ہوئی تھی، اگلی آیتیں تو بالکل ہی اب وہ باتیں آپ کو سمجھا دیں گی انشاءاللہ. جب تک دین کا کام دل کی خوشی سے نہیں کریں گے وہ مغرم ہے. لکھ لیں، مغرمہ وہ ذمہ داری جو کسی نے آپ کے سر پہ ٹھوک دی. کر رہی ہو نا، بنا رہی ہو نا، بنا بنائے آپ کر رہی ہیں نا، کیوں کریں، مت کریں. آپ ایک جملہ لکھ لیں اپنے لیے، میں بھی اپنے لیے، آپ بھی اپنے لیے. میں تو اپنے اس پڑھانے پہ ہی لوں گی، اگر مجھے یہ پڑھانا بوجھ لگ رہا ہے تو مان لیجئے میں آپ کی مجبوری میں پڑھا رہی ہوں، और अगर ये मेरी ऑनर, ये मेरी रूह की ग़िज़ा, ये मेरा प्यार और मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ और मेरे दिन का बेहतरीन हिस्सा है तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये काम मेरे लिए आसान है। आपके लिए पढ़ाऊँगी ना हर एक जुमले में, मैं 10 ताने दूंगी आपको। गुस्से सीधे बैठे बिठा दिए मुझे, ले आए घर से, खुद तो आए नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये टोन मेरी बदतमीजी की आपको बताएगी कि ये किसी के कहने पे आई है, ये खुद नहीं आई। कुछ लोगों को नेकी का काम इतना बोझ लगता है, वो कहते हैं अल्लाह करे ये नेकी की दावत देने वाले रहे ही ना। सीधी सी बात है, सुख चैन के दिन खाते थे, सोते थे, पीते थे, क्या साल में एक फंक्शन होता था, खुशी खुशी डिशें बना के ले जाते थे। आज भी लोग बड़े कहते हैं एक प्रोग्राम करें ना साल में, फिर देखिए कैसा होता है, तो वो भी देखे मैं। तो याद रखिए दीन से रस्मी ताल्लुक तो ये बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े स्टेज सजा कर आप बड़े बड़े हॉल लें और एक महफिल रबीउल अव्वल में रखें और आप एक महफिल जो है रमज़ान में बरपा कर लें सीरत नबी पे करें, तीन ही बहुत हैं साल में, बस ख़त्म। बट क्या उससे फिर वो तबूक और वो सारे हालात बनते हैं जो होते हैं? तो ये जो मुनाफिक थे ये गर्दिश ज़माना के मुंतज़िर थे, इनके कान तैयार रहते थे सुनने के लिए कि अल्लाह के नबी माशाल्लाह पूरे हो गए और अबू बकर गए और उमर गए, और अंदर ही खातिर इनके ना दिल में वो जैसे खुतबुत लगी थी। और मैं तीसरी दफ़ा जुमला बोल रही हूँ सूरत के दौरान कि ईमान वाले को ईमान की आजमाइशें कभी कभी आती हैं, मसायब खमसा कभी हो गया ना, वन सा वीक, मुनाफिक मुसलसल अजाब में रहता है, उसका दिल खुतबुत कर रहा होता है, वो ना कुछ कर रहा होता है, वो सिर्फ खबरें पढ़ पढ़ के परेशान हो रहा होता है। अब ये हो गया, अच्छा अब ये भी मिल गया, अब ये भी होने लग गया, अब इधर भी, अब भी है कि या तरब्बस बिकुम दवायर, अल्लाह ताला फरमाते हैं अलैहिम दायरतुस्सौ, नबी और उसके साथियों के लिए ऐसा सोचते हैं, असल में बुरी गर्दिश खुद इनके ऊपर पड़ी हुई है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यानी इनकी मुनाफ़क़त जो इनके दिल का रोग बन चुकी है ना, वही असल में इनकी असल बुराई है जो इन पे मुसल्लत है। इसमें मुश्किल लफ्ज़ आए हैं दो तीन, ज़रा सा इसको खोलते हैं। पहला लफ्ज़ मगरमा, पीछे हम पढ़ चुके हैं, गैन रामी अलगुरमा कहते हैं गिरा बार औरत को, भारी भरकम जो औरत होती है ना उसको गुरमा कहते हैं अरबी में, और गराम कहते हैं दायमी शर को, सख्ती और मुसीबत, वो शदीद मुसीबत जो इंसान का पीछा ना छोड़े और निजात हासिल करना मुश्किल हो। और जब ये गुर्म बनता है पेश के साथ तो तावान, जुर्माना, बेगार, यहाँ क्या कहते हैं टिकट, गाड़ी गलत खड़ी करें तो क्या मिलता है, बूद, बस वही वही ये गुरा, कितना गुस्सा आता है। वो एक माँ थी तो उसके बेटे को जॉब मिली, तो मैंने कहा आपका बेटा क्या करता है, क्या जॉब मिली, तो कह रही कि वो लोगों की गाड़ियों पर टिकट लगाता है। मैंने कहा खबरदार तुमने ये काम नहीं करना, रोज़ बद्दुआएं लेके आओगे, किसी को टिकट दे के खुशी थोड़ी होती है, मेरे हाल टिकट ही कहते हैं आप लोग, या चले जो भी आप कहते हैं, लापा, यही मैं सुनना चाह रही थी, लापा लगाया, लापे लगाने की जॉब मिल गई। कहने लगी रोज़ तुम कितनों की बद्दुआएं लेके आओगे, जो आएगा बाहर खुशी खुशी आपका लापा देकर वो कहेगा ये कौन बदतमीज़ लगा गया। तो ये लापे को गुरामा कहते हैं, यानी इसी तरह की चीज़ है जिसको बंदा खुशी से कबूल नहीं करता, बेगार की चट्टी जिसका अदा करना ज़रूरी हो, मुफ्त का जुर्माना, ऐसी मुसीबत जिसे छुटकारा ना हो। इसी तरह गरीम कहते हैं मकरूज़ को, जिसके ऊपर कर्ज हो, कर्ज ख्वाह दोनों के लिए आता है, मकरूज़ तो इस कर्ज़ के बोझ के नीचे दबा होता है, दोनों ही मुश्किल में फंसे होते हैं। इसी तरह अल मुगरम कहते हैं असीरे मोहब्बत को, कौन, जो महबूब के पीछे पीछे फिरता रहता है, क्योंकि जो कर्ज ख्वाह होता है ना वो भी मकरूज के पीछे पीछे फिरता है। तो बहरहाल लगे रहना और चिमटे रहने का मानी है इस माने में, ठीक है। तो अब यहाँ तावान के मानों में आप बात मुझे लगता है कि समझ आ गई है आपको कि किस तरीके से वो इसको चाहते थे कि ये काम ना हो। दूसरा जो लफ्ज़ है यतरब्बस पीछे गुजरा है, लेकिन चलें, रबस रब्स पीछे हमने औरतों के बारे में पढ़ चुका, तरब्बसु तलाक के इशू में कि किसी खैर या शर का इंतज़ार करना, यानी अच्छे हालात भी इसके बाद हो सकते हैं बुरे भी। तो यहाँ देखिए लफ्ज़ जो आया वो कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि इनको खुद नहीं पता कि नबी के साथ अब आने दिन वाले दिनों में अच्छा होगा या बुरा। फिर जो लफ्ज़ दो दफ़ा आया यहाँ वो है दवायर और दायरा, दोनों एक ही लफ्ज़ है, दाल वौरा, दायरा किसको कहते हैं, गोल चीज़ को, दायरा ये दूर दौरन के किसी चीज़ का इस तरह घूमना कि वापस वहीं आ जाए जहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। पुरकार किसको कहते हैं, अरबी ज़ुबान में दवार कहते हैं पुरकार को, एक सिरा बीच में रख के उसके इर्द गिर्द दायरे लगाते हैं, और दायरा तो उनकी जमा दवायर है। अब यहाँ ये एक मुहावरा है, किसी के ऊपर जमाने की गर्दिश, उर्दू में भी ये जुमला हम बोलते हैं ना, फलां का तो आजकल गर्दिश में है, तो वही यहाँ मानी है कि किसी भी मुसीबत ने उनको घुमा हुआ, गर्दिशों में आया हुआ शख्स, या गर्दिशों में आना। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं इनको तुम इनके हाल पे छोड़ो। इस निफाक का इलाज क्या है? इल्म। इनको बुलाओ, इसी सूरत के एंड पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड के करीब ये आयत आएगी कि ऐसे बदुओं को देहातों से बुलाओ, नबी के पास कुछ अरसा रहें, कोई कोर्स करें, अदब सीखें, फिर उसके बाद जाएं और अपने बस्ती के लोगों को सिखाएं। तो याद रखिए कि आज हम मुसलमानों में भी जो ज़्यादा निफाक है ना, मैं सच बताऊं कि वो इल्म की कमी का है। हुब्बे दुनिया को एक साइड पे भी कर दीजिए ना, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सारे ही अरबी मुनाफिक हैं? तो ये कभी नहीं होता। अल्लाह की सुन्नत है कि वो हर तरह के हालात के लोगों की जो चीज़ें उसको पेश करते हैं। आयत 99 उन लोगों की तारीफ़ में है कि जिनको इतना नहीं मिला, नबी की सोहबत भी नहीं मिली, वो शहरों वाले आराम भी नहीं मिले, इसके बावजूद उनका हाल क्या है? व मिनल आराबी, और आराबियों में से, बदुओं में से, देहातियों में से, कुछ भी लिख लें, मैं यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो लोग भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखरत पर। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अंदर ईमान मौजूद है, ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखरत पर। वह यत्तकीज़ू, पकड़ते हैं, बनाते हैं, मा युन्फिकु, वो जो वो खर्च करते हैं, यानी जो कुछ वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, उसको बनाते हैं क्या? कुरुबात इंदल्लाही, अल्लाह के कुर्ब का जरिया। ये है जो आप कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी कुर्ब से है, हर वो चीज़ जो अल्लाह की कुर्बत लेने के लिए की जाए। ये वही लफ्ज़ है यहाँ आया हुआ कि जो कुछ भी खर्च करते हैं, थोड़ा करते हैं या ज़्यादा करते हैं, जान लगाते हैं या माल लगाते हैं या अक़ल लगाते हैं, ये अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए। वह सलावात रसूल, और रसूल की दुआओं का ज़रिया, यानी ये वो लोग हैं जो देहातों में रहने के बावजूद भी सच्चे मोमिन हैं। ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को तावान नहीं समझते, अपने लिए अल्लाह का कुर्ब का ज़रिया समझते हैं, शौक़ से खर्च करते हैं, तक़र्रुब इलल्लाह का यकीन है इनको, दीन के लिए माल खर्च करने के लिए अल्लाह का कुर्ब और रसूल की दुआ, ये है बेस्ट खर्च दीन का। याद रखिए, जब अल्लाह के रास्ते में माल दिया जाता है, दिया तो किसी बंदे को ही जाता है ना, उसके हाथ पे रखा जाता है, खबर होती, किसी को खबर हो सिर्फ इतनी कि वो दुआ दे दे, दैट्स इट। सलावात, कुछ ने कहा सलावात से मुराद नमाज जनाजा भी है। ला तुसल्ली अला अहदिन, पीछे पढ़ के आए पिछले सबक में, चूँकि मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ने से अल्लाह के नबी को रोक दिया गया था, तो यहाँ सलावात से एक तफसीर ये भी की जाती है कि आपको पता चल जाए कि ये मुनाफिक नहीं था, और कल अगर ये मर जाए तो आप इसका नमाज जनाजा पढ़ दें। क्या इनकी ये बात पूरी होगी? बिल्कुल होगी। अला इन्नहा कुर्बतुल्लहुम, आगाह हो जाओ कि ये इनका निफाक, इन्नहा क्या है? इन्फाक, निफाक नहीं, इन्फाक, खर्च करना, कुर्बतुल्लहुम, इनकी कुर्बत का ज़रिया होगा। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अनकरीब अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। क्या पता चला कि जिस नीयत से ये खर्च करते हैं, जिस नीयत से ये अल्लाह के रस्तों में लगाते हैं, अल्लाह इनकी वो नीयतों को कबूल भी करेगा, इनको फ़ायदे भी देगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का अमल ज़ाया नहीं करता। तो क्या पता चला खुलासा इन दो आयतों का? देहात में रहने वाले लोग दो किस्म के होते हैं। एक वो हैं चूँकि वो इल्म से दूर हैं, नबी की सोहबत से दूर हैं, बराह रास्त उन तक दीन का पैगाम नहीं पहुँचा, तो सख्त दिल, कठोर, कुफ्रन व निफाक व अजदर, दीवारें हैं पत्थर की बनी हुई, उनको तो दीन पे खर्च करना इतना मुश्किल लगता है। इसमें एक शख्स का नाम भी आता है तफसीर इब्ने कसीर में कि एक बार एक शख्स था देहात से आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने आपको कोई तोहफा दिया, दे दिया, आपने कबूल कर लिया हस्बे आदत, जब तक आपने उस तोहफे से कई गुना बड़ी चीज़ उसको वापस ना कर दी, उसने आपका पीछा ही नहीं छोड़ा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर देहातियों से तोहफे लेने छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने तो गिनना है, 50 दे के गया था, अब मैंने 51 लेने हैं। वो शादी पे जब क्या बोलते हैं उसको, नेवा न्योंद, अभी भी है वो, 15 साल पुरानी कापी निकलती है वो, मेरे बेटे की शादी पे किया गया। हालांकि डॉलर और पाउंड और ये क्रोन का रेट कितना बदल गया, या तो फिर वहाँ कैलकुलेटर भी रखें, मनी एक्सचेंज रखें कि उस दौर में 50 रुपये का आज का क्या हिसाब था। लोग क्या, मैं कहती हूँ कितना शर्मिंदा करते हैं, और बात हाथ में नोट लेके खड़े रहते हैं जब तक मूवी वाला सामने ना आए, या वो माँ ना लड़के के सामने देते नहीं। भाई आप किसी की बहू को दे रहे हैं, दे दीजिए, सास को बुलाएंगे या आपकी बहू को दे रही हूँ, थैलियाँ ले लेके फिर रहे होते हैं कि नहीं, है ये आज बात के नहीं। तो ये सब कुछ यही है
लिफाफों में डाल के देते
जी, लिफाफों में डाल के नाम लिख के देते हैं, बात सच है। और वो किसी ने किसी को लिफाफा दिया, वो बंद करके दे दिया, बाद में कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं कहना तो नहीं चाह रही थी, बताना नहीं चाह रही थी, बट आपका लिफाफा अंदर से खाली था। तो उसने कहा कि देखो सोचो, अगर मैंने खाली देना होता तो मैं उस पर अपना नाम लिखती। सोचने की बात है, यानी आप देखिए, ये आप इसको लेन देन कहते हैं, ये मगरमा है। शादी पे जाएंगे, 500 करोना दिया तो जा नहीं सकते। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस से किसी की शादी में बगैर गिफ्ट दिए जा सकते हैं? मैं तो नहीं देती शादी पे जाऊँ, मुझे बुलाता ही कोई नहीं अब तो। वैसे इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी वजह मुझे ना बुलाने की, मैं शादी वाले दिन नहीं देती, बहुत मजबूरी, ऐसा हो के फिर मिलना नहीं, कोई ऐसा ताल्लुक है या कोई ऐसी चीज़ है जो अगले को मुश्किल नहीं होगी संभालनी, उस दिन नहीं देती। कितनी बेवकूफ़ी है, घर वाले को अपनी होश नहीं, वो तो जूती उसको लग रही है, बुंदे उसको चुभ रहे हैं, बाल उसके खखरा बना हुआ है, तो आप उसको जाके कहते हैं गिफ्ट ले लीजिए, फिर चोरियां भी होती हैं, फिर लिफाफे गुम जाते हैं, फिर वो बेचारे कहते हैं बॉक्स गिफ्ट्स ना लाएं, तो फिर आपका दिल बुरा होता है। तो आप एक दिन पहले दे दें, बाद में उसी दिन पहन के सोना है, उसी दिन उन प्लेटों में खाना खाना है। जी आप कुछ कह रहे हैं?
जी वही मैं कह रही थी कि अब तो कहते हैं कि नो बॉक्स गिफ्ट।
वो नौ बॉक्स तो, पर वो लिफाफे भी तो चोरी हो रहे हैं ना आजकल काफ़ी। जी आप वो बर्तन देने जाते थे तोहफे दे ले जाओ, और जहेज कमरों में सजा देते थे कि आके देख भी लो हम अपनी बेटी को क्या जहेज दे रहे हैं। फिर वो बताती थी साथ ही खाला मामा, ये वहाँ से आया था, ये यहाँ से आया। मैंने खुद देखा है, नाम भी मेरे मुंह पे आने लगा था, एक बिरादरी है कि वो कहते हैं कि जब सारे आएंगे तो बारी बारी बताना, वो पूरा बताते हैं कि ये बेड सेट दुबई से मंगाया था, ये टेप रिकॉर्डर इस कंपनी का ये। तो फिर उन्होंने एक वक्त आया कि रिकॉर्डिंग करके अंदर टेप लगा दी, यकीन करें मैंने खुद वो जगह देखी हुई है, ये पाकिस्तान की बात है कि अंदर जाएं उस कमरों में घूमें फिरें तो कैसेट चल रही होती थी। आज तो बेवकूफ़ी लगेगी ना। तो याद रखिए ये निफाक नज़र नहीं आता, ये असल बात वही है जिस काम पे दिल आए, बस इसका मैंने तो अपने लिए एक गुमान लिया है, लव योर जॉब, लव योर जॉब, अपने काम से प्यार करें। क्या मतलब जॉब तो हम नहीं करते, जो काम कर रहे हैं, अगर आप एक मॉम है लव टू बी अ मॉम, आप कुकिंग कर रही हैं लव टू कुक, कपड़े धो रही हैं लव टू वॉशिंग, पढ़ रहे हैं लव टू पढ़ें, जो करें खुशी से करें, रोते पांडे कभी फायदेमंद नहीं हुए, जो रो रो के काम करें। आप खुद देखें ना, कोई मेहमान है और आप खाने लेकर रो रहे हैं, थक गई टूट गई खा लें प्लीज़ की, थक गई बहुत हो गई, खाएगा वो एक लुकमा उसके अंदर नहीं जाएगा। हम मेहमानों को क्या शो करा रहे होते हैं, इट्स माई प्लेयर, ये मेरी खुशी है, अल्लाह को दिखाएं इट्स माई प्लेयर, इस पे भी वो कबूल कर रहे हैं ना, तो यकीन कीजिए ये उसकी मेहरबानी है, मेरा आपका गिफ्ट अल्लाह के काबिल नहीं है, ये कोई इबादत है, ये कोई हमारे काम है? ये तो वो मालिक ही इतना प्यारा है कि वो हमारी इन छोटी छोटी टूटी टूटी कोशिशों के ऊपर भी हमसे राजी हो जाता है, वरना अगर आप और मैं नहीं, अगर अपने बोझ के साथ करेंगे काम की बरकत चली जाएगी। टेस्ट खाने का सिर्फ उस औरत के हाथ में है, मैं कह सकती हूँ बगैर आप शान मसाले और बिरयानी मसाले और निहारी मसाले डाले, अगर आपका खाना कोई कहता है मज़े का है तो वो आपका प्यार का टेस्ट होता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, और पता चला फ़ोन हाथ में, मैं नमक डाल दिया था, फिर कभी दो दफ़ा डाल दिया था, कभी ओ हो गर्म मसाला तो डाला ही नहीं, वजह क्या कि आपके दिमाग कहीं और होता है। तो ज़िंदगी का असूल क्वालिटी लाइफ, जो काम कर रहे हैं उस वक्त अपने आप को वही बना ले। मासी हैं तो टुंगले शलवार, फिर मासी हो, बाथरूम धो रहे हैं इससे प्यारा काम ही कोई नहीं है, किचन तो कर रहे हैं साफ, किचन तो बस वही काम है, फिर देखेंगे आपके कामों में लज्जत कितनी होगी, इसकी वजह से बंदा थकता भी नहीं है, क्योंकि आप हर काम करके एक सेटिस्फेक्शन लेते हैं कि जो सोचा था वो मैंने कर लिया। तो बहरहाल ये सारा यहाँ पे आप कह लीजिए कि अब वो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तरफ कड़वा पानी और एक तरफ मीठा पानी,